الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم رواه مسلم. میرے بھائیوں, پردہ نشین, میری محترمہ مائیں اور بہنیں, اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادناہا اماتۃ الاذی عن الطریق, حدیث کی مجلس بہت ہی مبارک مجلس ہوتی ہے جس میں بیٹھنے سے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دیتا ہے. حدیث کی مجلس جو ہے بہت ہی نورانی مجلس ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں لکھا ہے کہ اپنا کشف لکھا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یورپ کے جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی جس مسلک کے بھی, چاہے بریلوی مسلک کے, دیوبندی مسلک کے ہو یا کوئی بھی مسلک, ان سب کی حدیث کی جو چین ہے وہ شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے. سب کی, کوئی باقی نہیں, چاہے وہ پاکستان سے, دنیا میں جہاں کہیں رہتا ہوں, یا ہندوستان سے, سوال ہی نہیں پیدا, چاہے وہ بعد میں سلفی بن گیا, لیکن سب کی بخاری شریف, مسلم شریف, حدیث کی چین جو ہے, سند جو ہے, شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے. شاہ ولی اللہ یہ سب سے پہلے آدمی تھے جو ہندوستان میں حدیث لے کر آئے تھے, شاہ صاحب رحمۃ اللہ. اس وقت ہندوستان پورا تھا, پاکستان, بنگلہ دیش, سب ایک, کشمیر سب ایک تھا. پھر اس کی برانچز کہاں کا دیکھو, پورے یو کے میں ہندوستان پاکستان کے علماء ہیں, پورے کینیڈا میں دیکھو, امریکہ میں دیکھو, جہاں جہاں چلے جاؤ, آسٹریلیا میں دیکھو, سب جگہ علماء ہیں, چاہے وہ بریلوی مسلک کے ہو, چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہو. وہ بعد کے علماء کو نہیں مانتے ہیں, بعد کے علماء جو ہے ان کی وہ چین نہیں, لیکن دوسری طرف چین پہنچتی ہے شاہ ولی اللہ تک. شاہ ولی اللہ بیچ میں ضرور ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے, کی سند. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نور آسمان سے اتر رہا ہے, آسمان سے نور اتر رہا ہے, لکیر کی شکل میں, سے لائنز, لائنز ایسے جیسے رین کیسی اترتی ہے, بارش کے قطرے ایسے. یہ نور اتر رہا ہے آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر, नूर, फिर वहां से निकलता है दुनिया में जहां जहां लोग हदीस में मशगूल है, हदीस पढ़ने में सुनने में, जहां जहां चाहे उलमा हो चाहे हदीस की मजलिस हो, वो नूर वहां से निकलकर फिर जाता है उनके सीने में जो हदीस को सुनने के लिए, हदीस को पढ़ने के लिए, हदीस के दर्स में आते, किसी उलमा हो अवाम हो जो भी हदीस के अंदर मशहूर, वो नूर है। इसकी मिसाल दी है जैसे पावर हाउस, लाइट के लिए एक पावर हाउस होता है, गोया वाटर लाइट सप्लाई होती है वाटर से, वाटर से पावर हाउस, फिर पावर हाउस से पूरी कंट्री में हर एक के घर में जहां ये लगा हुआ हो, जहां अगर घर में बल्ब नहीं लगा हुआ, ट्यूब लाइट नहीं है, तो फिर उस घर में लाइट नहीं आएगी, तो वो कनेक्शन जाता उस घर में, उस घर में अगर नहीं है डाक डाक ही रहे। तो गोया के जिस जिस घर में, जिस मस्जिद में, जहां कहीं जो भी आदमी हदीस की मशगूलियत में लगा हुआ है, उसके पास वो लाइट पहुंचती, ये चीज है। इसीलिए जहां कहीं हदीस पढ़ी जाती है वहां नूर बहुत उतरता है। कुरान पढ़ा जाए, कुरान समझाया जाए, हदीस पढ़ा जाए, कुरान की तफसीर हो, हदीस के दर्स हो, वहां बहुत नूर उतरता है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी जो है, उन्होंने लिखा है कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनका नाम ही है मुहद्दिस देहलवी, दिल्ली के बड़े मुहद्दिस, वो जिस जगह बैठकर हदीस पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे हदीस का, जैसे यहां दर्स होता है, जाग फरमाया उनके इंतकाल हो जाने के बाद भी कई कई दिनों तक वहां से नूर नजर आता था। इंतकाल होने के बाद भी, तो वो जब दर्स देते थे तब कितना नूर, ये अलग बात है कि मेरी आंख से वो नजर नहीं आता, अल्लाह वालों को नजर आता है, अल्लाह वालों को नजर आता है। जैसे मैंने पहले एक वाक्य सुनाया था कापोदरा का, हमारे यहां गुजरात में मेरे गांव के करीब मौलाना मसीहुल्ला खान साहब आए हुए थे, मसीहुल्ला खान साहब आए हुए थे, बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे थे। तो दावत थी उनकी मौलाना अब्दुल्ला कापोदरवी के मकान पर लंच की। अब जब खाना खाकर जा रहे थे तो एक जगह खड़े हो गए, सब खड़े हो गए और एक कोने में देख रहे हैं, ऐसे खड़े खड़े देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ देर तक देखते रहे। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब ने खुद बयान किया है कि मैंने हजरत से पूछा, हजरत वहां तो कुछ भी नहीं, क्या देख रहे हैं, न कोई मकान है, न कोई आदमी है, न कोई चीज है, उस कोने में देख रहे हैं। तो फरमाया यहां से मुझे नूर नजर आता है, ये फरमाया मुझे नूर नजर आता है। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जगह है जहां बैठकर मेरे वालिद साहब जो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और मेरे चचा और गांव के लोग बैठकर यहां हदीस की तालीम करते थे। अब वो सब तो कब इंतकाल कर गए, इनके वालिद और चचा और सब कई टाइम पहले, लेकिन अल्लाह वालों को वो नूर नजर आता है वहां जहां हदीस का दर्स होता था, जहां तालीम होती थी कुरान हदीस की। अब अंदाजा करो अल्लाह वालों को तो नजर आता, हमें नजर नहीं आता, क्योंकि उनकी दो आंख होती है, हमारी एक ही आंख है, नहीं हमारी भी दो है लेकिन उनकी तीन होती है, ये सामने वाली एक ही है लेकिन उनकी दिल की आंख भी होती है, वो दिल से देखते थे। हाँ, इसीलिए शाह अब्दुल अजीज दबाग रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़ा अल्लाह के वली, लेकिन वली तो थे लेकिन आलिम हाफिज नहीं थे, बल्कि नाजरा कुरान भी पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन हजारों उलमा उनसे बैठे, जो बहुत बड़े वली थे। का ताल्लुक तो दिल के साथ है, इल्म के साथ नहीं। हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह आलिम नहीं थे, हाफिज थे सिर्फ, लेकिन उनके हाथ पर बैठ हुए बड़े बड़े उलमा, कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोई, मौलाना थानवी, मौलाना क्या क्या बड़े बड़े, हालांकि ये बड़े बड़े आलम है, बड़े बड़े आलिम ये लोग, लेकिन वो कहते थे हम किताब के आलिम हैं और ये अल्लाह के आलिम है, यानी अल्लाह को जानने वाले। हम किताब के आलिम हैं लेकिन वो किसको जानने वाले, अल्लाह को जानने वाले, इसलिए हम बैठ होते हैं। हमारे बहुत सारे मसले ऐसे ही हल हो जाते, तो अल्लाह वाले अल्लाह से लेते हैं फिर देते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में डाल देता है, अल्लाह ताला उनके दिलों में डालता है। जाहिरी बात कि नेक लोगों को अल्लाह ताला नेकियों की तरफ रहनुमाई करता है। अंदाजा कीजिए कि शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह नाजरा कुरान भी पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनको पता हो जाता था कि ये कुरान पढ़ रहा है या हदीस पढ़ रहा है या और कोई बात कर रहा है, उनको पता हो जाता। तो उनको पूछा कि हजरत आपको कैसे पता कि ये कुरान पढ़ रहा है, हो सकता है कोई नशीद भी कुरान के अंदाज में पढ़ता हो या कोई अरबी सेंटेंस कुरान के अंदाज में पढ़े, जैसे कई फहालुके कई फहालुकया, तो वो तो अरबी भी कुरान के अंदाज में पढ़े तो तुम्हें कैसे पता चले। तो कहा नहीं, जब कुरान कोई पढ़ता है तो उसके मुंह से सूरज जैसी रोशनी निकलती है, सूरज, और जब कोई हदीस पढ़ता है तो उसके मुंह से चांद जैसी रोशनी निकलती है, और कुछ पढ़ता है तो कुछ नहीं निकलता। अंदाजा करो, तो एक मरतबा लोग भी होते हैं जरा इम्तिहान लेने वाले भी, तो ये किसी ने टेस्ट कर लिया हजरत को कुरान की आयत पर, हाफिजु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता सलातुल असरी, हालांकि वह सलातुल असर कुरान में नहीं है, ऐड कर दिया, हाफिजु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता सलातुल असरी वकूमू लिल्लाहि कानितीन, पूरी आयत पढ़ लिया दूसरे से पढ़ा गया, लेकिन उसमें ऐड कर दिया एक लफ्ज सलातुल असर, ये हदीस में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातुल वुस्ता के माना है नमाज की पाबंदी करो, खास करके असर की नमाज की पाबंदी, ये हदीस में है। तो इन्होंने कुरान के साथ हदीस को मिला इनको टेस्ट करने के लिए। सो पूछा मैंने क्या पढ़ा, तो कहा तुमने कुछ कुरान पढ़ा और बीच में हदीस को ज्वाइन कर दिया, इसलिए कि तुम्हारी रोशनी बदल गई, पहले सूरज जैसी थी फिर चांद फिर सूरज। अल्लाह वालों को तो नजर आता है, हमें नजर नहीं आता, इसलिए मैं कहा करता हूं कि देखो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने, उनको देखो, उनके परदादा फायर वर्शिपर थे, मजूसी थे, मजूसी फायर वर्शिपर मजूसी थे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा काम लिया कि उनकी किताब चमक गई सारी दुनिया में, बुखारी से जरूरी नहीं है कि आदमी मुसलमान अल्लाह ताला किसी से भी काम ले सकता है। कैसे पैदा हुए तो ब्लाइंड थे ना, बुखारी पैदा हुए तो ब्लाइंड थे, बाप का भी इंतकाल हो गया था यतीम, और आपको पता है कि यतीम जब उसकी तरबियत बराबर ना हो तो वो लॉस हो जाता है, बच्चा लॉस हो जाता है, लेकिन माँ ने बराबर तरबियत की, बच्चे की तरबियत माँ ने की, बाप ने माँ ने की। कैसे रोजाना तहज्जुद में उठकर रोटी थी, अल्लाह मेरा बच्चा ब्लाइंड है, मैंने तो सोचा था कि बाप मर गया और बहुत पैसे छोड़कर गया है, क्योंकि बाप भी मुहद्दिस था, इमाम मालिक के शागिर्द थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के शागिर्द थे, इमाम बुखारी के वालिद और सबसे इंतकाल कर गए और बच्चा यतीम था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद इंतकाल का आप यतीम थे। तो रोजाना रोटी थी, अल्लाह बाप ने कहा ये बाप पैसे छोड़ गया है बेटे की तालीम के लिए और ये तो ब्लाइंड है कैसे पढ़ेगा, फिक्र हो गई, अल्लाह मेरे बेटे को आंख दे दे, आंख रोजाना रात में उठ के ताकि मैं उसको तालीम पढ़ाऊं, तरबियत करूं, वो तेरा दीन का काम करे। बाप ने क्या कहा था इंतकाल से पहले अपने शागिर को, मेरे पास इतना माल है, इस माल में एक पैनी हराम की, हराम तो क्या शक की भी नहीं है, मैंने मेरे बेटे के लिए रखा है कि वो इल्म पढ़ेगा हलाल माल से। देखिए कैसा शौक है बाप का, लेकिन बच्चा पैदा हुआ तो भाई नहीं, मां रो रही है, बाप भी नहीं, शी वाज क्राइंग, दो साल रोई, 2 years छोटे बच्चे। तो ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, मां के ख्वाब, और क्या कहा, घबरा नहीं, घबरा नहीं, डोंट वरी, तुम्हारे तुम्हारा बेटा सुबह उठेगा तो उसकी आई साइट वापस आ जाएगी, उसकी आई साइट क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा को कहा ख्वाब में। इंतजार कर रही थी कब मेरे बेटा उठे मैं देखूं, उठा तो ऐसा ही वापस आ गए, आप तो आ गई, देखते हो गए बच्चे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बच्चा होता, मां की दुआ, मां की दुआ, मां की तरबियत, मां की दुआ, मां की दुआ के लिए आसमान पर कोई दरवाजा नहीं, सीधी जाती है अल्लाह, इसलिए कहा कि मां बद्दुआ ना करे बच्चों के, शैतान भी ना कहे, शैतान तो वो है जिसको अल्लाह पाक ने उसको रिजेक्टेड कर दिया, हाउ कैन यू कॉल योर चाइल्ड शैतान, शैतान भी ना कहो, इब्लीस भी ना कहो, उसके लिए गुस्से में भी दुआ, गुस्सा तो आता है क्या करें, लेकिन दुआ निकल गई तो काम हो जाए। अब ये 195 हिजरी में पैदा होते हैं बुखारी, से बात यार करनी है मुझे, 195 हिजरी में वो पैदा होते हैं, और 15 साल की उम्र में हाफिज बनकर अब बहुत सारी किताब को उन्होंने बायहात कर लिया। ऑन द एज 23 में, जब उनकी उम्र 23 इयर्स की हुई, तो उन्होंने बुखारी लिखना शुरू किया। आज 23 इयर्स का बच्चा कोई हदीस लिखता है, मक्का से शुरू की, क्योंकि हदीस तो बहुत सीखी उन्होंने, उनके उस्ताद कितने, मेरे और आपके उस्ताद होंगे बहुत बहुत तो 20-25-30, चलो ना नाजरा से लेकर आलिम बनने तक 40-50 उनके उस्ताद थे, 1000 के ऊपर, मोर देन 1000 उनके उस्ताद थे, सारी कंट्री में सफर किया उन्होंने इल्म हासिल किया। फिर जब लिखना शुरू किया तो मक्का मुकर्रमा से शुरू किया, और किताब को एंड किया जन्नत रियाजुल जन्ना में, मदीना मुनव्वरा, इस्लाम भी शुरू हुआ है मक्का से और एंड हुआ है मदीना में, तो मैं अपनी किताब मक्का से शुरू करता हूँ, खत्म करता हूँ मदीना मुनव्वरा। किताब लिखी इन्होंने, लिखते लिखते उनको 16 इयर्स हो गए बुखारी शरीफ, क्योंकि उनको 600,000 हदीस याद थी, वो 600,000। अब 600,000 में से ही हैव टू चूज, सेलेक्ट, सेलेक्ट करनी, कितनी सेलेक्ट की, देखने जावे तो नॉर्मल हदीस अगर रिपीट, चूंकि बुखारी शरीफ में बहुत सारे हदीस रिपीट है, रिपीट का क्या माना, जैसे इन नमल आमाल बिन निया, इन्होंने ये हदीस 7 मरतबा लिखी है बुखारी शरीफ, यहां भी लिखी वहां भी लिखी वहां भी, क्यों, इसलिए कि उन्होंने ये हदीस 7 उस्ताद से पढ़ी है, इनसे भी पढ़ी तो इनके नाम से यहां लिखी, इनसे भी पढ़ी इनके नाम से यहां लिखी, उनसे पढ़ इनके नाम से वहां लिखी, उनसे पढ़ उनका, तो हर उस्ताद का नाम से वो हदीस लिखी हर जगह, और कोई कोई हदीस उन्होंने 20-20 मरतबा लिखी कि 20 उस्ताद से पढ़ी है, तो हर उस्ताद के नाम से उन्होंने वो अपने से लेकर नबी सासम तक मैंने इनसे पढ़ी है, मैं इसलिए इनसे इन ज्यादा पढ़ी है, इनसे पढ़ी, इनसे पढ़ी, सब अलग अलग जगह। तो अगर रिपीट गिनने जावे तो इस 6000 वो 600,000 में से 6000 निकल जाए, और अगर रिपीट को निकाल दे तो बहुत बहुत तो 2500 हो। बस इतनी हदीस उन्होंने सेलेक्ट की है 600,000 में से 16 साल में। रोजा, फास्टिंग एवरी डे, हर रोज हदीस लिखने से पहले इस्तिखारा, हदीस लिखने से पहले 2 रकात नमाज, कितनी बार नमाज पढ़ी होगी, गुसल, गुसल के बगैर तो नहीं लिखते, गुसल 2 रकात, इस्तिखारा गुसल 2 रकात एंड देन हदीस। और हेडिंग जो है वो उन्होंने रियाजुल जन्नत में लिखा, जहां हम मर जाते हैं जाने के लिए, वहां बैठ कर उन्होंने लिखा। सो 195 में वो पैदा हुए, 23 साल की उम्र उनकी हो गई, उसके बाद उन्होंने हदीस लिखना शुरू की, तो फिर खत्म की इन्होंने 241 में। उसके बाद 256 में उनका इंतकाल हो रहा है, तो दूसरे 9-10 साल में उन्होंने वो अपनी किताब जो बुखारी शरीफ वो पढ़ाई कितने लोगों को, 90,000 लोगों को। वो माँ की दुआ है, वो माँ की दुआ है। कितने, मैं अगर 50 साल में पढ़ाऊं तो बहुत बहुत तो कितने मेरे स्टूडेंट होंगे, इनके 10 साल में 90,000 स्टूडेंट है जिन्होंने बुखारी शरीफ से पढ़ा। कितना नूर होगा उसमें, आप उसको पढ़े तो कितना सवाब। तो ये हदीस जो है यहां पर नकल की जाती है बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, वही हदीस है, सिर्फ इतना है कि वहां से उठा के यहां कर दिया, ये हदीस है। इमाम मुस्लिम भी इनके उस शागिर्द है, इमाम तिर्मिजी भी इनके शागिर्द है, बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी। तो उन्होंने एक हदीस लिखी, उसमें से यहां एक हदीस है, वो इमातुल अज़ा अनित तरीक अदना, ईमान के 70 ब्रांचेस है, कितने ब्रांचेस है, 70 ब्रांच ईमान के, हमें तो पता भी नहीं, बाकायदा लिखा है कौन कौन से ब्रांचेस किताब है, मुस्तकिल किताब लिखी उस पर, ये जिसको शौबतुल ईमान कहते हैं, जिसको कहते हैं जी, किताब का नाम ही है शौबतुल ईमान, कितनी जिल्दों में है, उसमें सारी हदीस लिखी है कौन कौन से ब्रांचेस है, मुस्तकिल अरबी में उसका उर्दू में भी हुआ है हदीस है। उसमें सबसे हाईएस्ट ब्रांच जो है वो कहते हैं टॉप ब्रांच, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद, तौहीद के बगैर तो काम नहीं चलता, ईमान के बगैर तो काम नहीं चलता, तुम चाहे पूरी जिंदगी रोजा रखो लेकिन ईमान नहीं है तो रोजा बेकार है। सो हर आमाल के कबूल होने के लिए इन्नल्लज़ीना आमनू ईमान है, व अमिलुस सालिहात बाद में। तो तौहीद तो पैदाइश से लेकर मरते दम तक है, मरते भी आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दखल जन्नत, कलमा पढ़ गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ शुरू की है किताबुल ईमान से, ईमान से, और बुखारी शरीफ 2 जिल्द में उन्होंने खत्म की है किताबु तौहीद पर, ईमान से शुरू की। तो सवाल ये होता है कि तौहीद भी तो ईमान का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द ईमान, ईमान का माना भी तौहीद, तौहीद के माना भी ईमान, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वो तौहीद का माना, तौहीद के माना भी ईमान, फिर इसको अलग क्यों बयान किया, इसको अलग क्यों बयान, इसको शुरू में बयान किया, उसको एंड में बयान किया, होना चाहिए शुरू बयान कर देते ईमान और तौहीद टुगेदर, فرمایا, اشارہ کیا تمہاری زندگی ایمان سے شروع ہو اور توحید پر ختم. یعنی جب بچہ پیدا ہو تو پہلے ایمان, اذان اور اقامت, اور جب ختم ہو تو سکرات میں بھی نقین موتاکم لا الہ الا اللہ, مردے کو سکرات میں مرنے والے کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ, تلقین کرنا ہے, کہنا نہیں کہ کلمہ پڑھو, تم پڑھتے رہو تو تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ لے گا, لیکن اس کو کہنا نہیں بھائی بیٹا کلمہ پڑھو, نہیں. حدیث میں ممنوع ہے نقین, تلقین کا معنی ہے تم پڑھو تمہارے ساتھ وہ پڑھے گا, جیسے ہم پڑھتے ہیں تو بچہ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے, میں نماز پڑھوں تو بچہ دیکھا دیکھی پڑھتا ہے, تو مرنے والے کو کہنا نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کر وہ انکار کر لے, تم پڑھو بیٹھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تمہارے ساتھ وہ پڑھنا شروع کر دے گا, مرد ہو یا عورت, بیٹھ کے تم ذرا زور سے پڑھو کہ اس کے کان تک آواز جائے, تو وہ بھی پڑھے گا ساتھ, وہ بھی پڑھے گی, پڑھ لیا ختم, اس کو بار بار نہ پڑھاؤ, پھر پڑھو پھر پڑھو, نہیں, ایک بار پڑھ لیا ماشاء اللہ ختم, ابھی بات نہیں سمجھا رہی. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ کلمہ ہی پڑھے, کلمہ پڑھے تو اچھا ہے, اور کوئی بھی کلمہ اس نے زبان سے کہہ دیا جس میں اللہ کی تعریف ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, یا کریم یا کریم, الحمدللہ, لا کچھ بھی کلمہ مرتے وقت پڑھ دیا, اس کی موت ایمان پر ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے تو کیا کہا, اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی, اللہ میں ملنا چاہتا ہوں, پر انتقال کر. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کی تعریف کا کلمہ تم بول دو موت آ گئی, بس ایمان پر موت آ گئی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ چلو ایک آدمی دو مہینے تک آئی سی یو میں ہے تو کیا کرو گے, وہ تو آئی سی یو مر گیا, جیسے ہی مشین ہٹایا تو ختم ہو گیا, اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا, کوئی بھی تعریفی کلمہ بھی نہیں پڑھا, تو کیا وہ اسلام پر مرا کے نہیں مرا؟ سوال ہوتا ہے. حدیث میں تو کیا ہے, من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا لاسٹ کلام مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو یا کوئی ایسا جملہ, تو کہاں جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. لیکن یہ تو ایک ڈیڑھ مہینے سے آئی سی یو میں تھا اور ڈاکٹرز نے کہا وی ہیو ٹو موو دی مشین, جیسے ہی مشین ہٹایا تو دیکھا تو انتقال کر گیا, تو اس نے تو کلمہ پڑھا نہیں, تو پھر اس کا کیا ہوگا, کیا وہ اسلام پر مرا یا نہیں مرا؟ اسلام. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ, نام سنا آپ لوگوں نے, انور شاہ صاحب وہ ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں شاعر مشرق, کہ 500 سال میں تاریخ اس جیسے انسان کو بیان نہیں کر سکتی, 500 سال ایسا انسان ہے, بہت زبردست, 60,000 پوٹریز اینڈ اشعار ان کو یاد تھے. اسلام کی نشانی تھی, مولانا تھانوی کہتے ہیں اگر اس انور شاہ صاحب کا اسلام لانا یا اسلام میں ہونا یہ اسلام کے سچے ہونے کی نشانی ہے, یہ ایسا آدمی ہے اگر اسلام سچا نہ ہوتا تو قبول نہ کرتا, ایسا عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ گویا صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا, ایک آدمی پیچھے چھوڑ گیا, وہ کون ہے؟ انور شاہ صاحب, اتنی گویا کہ ان کی, وہ فرماتے ہیں ایسی بات جو پہلے نہیں سنی ہو جاتا, وہ کیا کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا, تو اس کو کہتے ہیں کلمہ ایمان, کلمہ توحید, اور اس کا دوسرا نام کیا ہے, کلمہ الذکر. کیا نام ہے؟ کلمہ الذکر. دا سیکنڈ نیم از کال کلمہ الذکر, دا فرسٹ نیم از کال کلمہ الایمان. اف سمبڈی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام تو اس کو ہم کیا کہیں گے, کلمہ پڑھو. کون سا کلمہ؟ کھانے پینے کا نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول, پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل الذکر لا,
जिक्र में सबसे अफजल जिक्र कौन सा है?
ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल जिक्र।
तो ये कलमा जो है इसको कलमा ईमान भी कहते हैं, कलमे तौहीद भी कहते हैं, कलमतुल जिक्र भी कहते हैं।
अब जो आदमी आईसीयू में था दो महीना एक महीना और आईसीयू ही में इंतकाल कर गया,
वो तो इस्लाम पर था जब से पैदा हुआ तब से लेकर, इस्लाम पर था, कलमा पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, सब कुछ करता था, कुरान तिलावत करता, कितनी बार कलमा उसने पढ़ा होगा। आखिर में बीमार होकर आईसीयू में चला गया तो क्या वो इस्लाम पर नहीं मरा? इस्लाम पर मरा है। क्यों? कलमे तौहीद तो उसके पास था। यहां मुराद है कलमतुल जिक्र।
क्या मुराद है? मरते वक्त जो कलमा पढ़ा उसको क्या कहते हैं? कलमे तौहीद।
कलमे तौहीद तो उसके पास है। अगर उस वक्त आप कलमा पढ़ा रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं मरते वक्त, तो सकरात में तो किसी का ईमान कबूल नहीं होता। एक आदमी सकरात में हो और आप इसको कलमा पढ़ा रहे हो तो कलमे तो कलमा कबूल नहीं है, तौबा भी कबूल नहीं है। इसको कौन सा कलमा पढ़ा रहे हैं आप? ईमान वाला कलमा, वो तो ईमान पर था। ही वॉज ऑन द ईमान, ही वॉज ऑन द तौहीद फॉर इयर्स एंड इयर्स।
अब आखिर में सिर्फ आईसीयू में चला गया
तो वो जिक्र नहीं कर सका,
ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र नहीं कर सका।
तो ये जिक्र मुस्तहब है।
जिक्र क्या है? मुस्तहब है।
और कलमा जो पढ़ना था शुरू में मुसलमान, वो तो फर्ज था, वो तो पढ़ा हुआ था उसने, तो ही तो पढ़ा हुआ था, उसी पर जिंदगी गुजरी है। लेकिन ये बीमार हो गया तो उसका क्या छुड़ गया? कलमा तो जिक्र छुड़ गया।
और कलमा जिक्र तो फर्ज नहीं, वो तो मुस्तहब है। एक आदमी जिक्र करे ना करे,
तो अल्लाह ने यूं कहा था कि तुम जिक्र करते करते मेरे पास आ जाओ, लेकिन चुके मजबूर हो गया तो उसका जिक्र छूट गया, वह जिक्र मजलिस में नहीं आ सका, तो काफिर हो गया, नहीं हुआ, जिक्र छूट गया उसका, मुस्तहब छूट गया।
तो उसकी मौत किस पर आई भाई? ईमान पर आई है।
ये बात
भी बयान की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह शुरू से लेकर आखिर।
तो बात चली थी यहां से कि सबसे हाईएस्ट ब्रांच अगर कोई है इस्लाम की तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है।
क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह।
और सबसे लोवेस्ट
जी 77, 78, 80 जो भी ब्रांच हो उसमें हाईएस्ट जो है वो ईमान है, लोवेस्ट है वो अदनाहा ईमान ततुल अदा अनि तरीक। आप रास्ते में चलते हो तो कोई तकलीफ देने वाली चीज हो तो उसको उठा करके आपने हटा दिया, ये ईमान का हिस्सा है, ये भी ईमान का हिस्सा है। आप चल रहे हैं तो कोई बड़ा स्टोन रस्ता में उठा करके आपने साइड पर रख दिया, बनाना पील पड़ा हुआ है आप उठा के, कोई आदमी उस पर गिरेगा, कोई नेल पड़ी कीड़ियां पड़ी हुई उठा के अपने साइड, किसी की गाड़ी में लग जाएगी तो हवा निकल जाएगी, टायर पंचर हो जाएगा या फना फना, आपने उसको वहां से उठाया और साइड पर कर दिया किसी को तकलीफ न हो,
ये ईमान का हिस्सा है।
ईमान तो अदनाहा ईमान तो अदा अनितरी। देखा? तो रास्ते में तकलीफ देने वाली कोई गंदी चीज हो, कोई कील हो, कोई छिलका हो, या किसी का पांव पड़े, किसी को चोट लगे, तो किस तरफ इशारा किया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फरमाया
दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, दीन सिर्फ रोजे का नाम नहीं है, दीन सिर्फ जकात का नाम नहीं है, ये सब दीन है,
मुआशरत भी दीन का हिस्सा है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को आता नहीं भी किसका है?
वो क्या है?
अपनी जात से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ये भी दीन का हिस्सा है। मेरी जात से दूसरे को तकलीफ ना हो, ये भी दीन का हिस्सा है। ये असल उसूल है हुकूकुल इबाद में। इसको भी गाली दे, उसको भी गाली दे, इसको भी मारे, रास्ते में कांटे डाल दे, रास्ते में पड़ोसी के गार्डन में कोई चीज डाल दे, चौली वक्त अच्छा लगे उसको, उसकी गाड़ी को जाकर टायर से हवा निकाल दी। ये सब तकलीफ देने वाली चीज है, ये भी ईमान का हिस्सा है। आदमी के अंदर ईमान की कमी है। फरमाया ये असलुल उसूल है, ये भी इबादत है, ये भी दीन है माशरे का। बहुत सारे करते हैं, रात को जाकर के टायर में से हवा निकाल देते हैं, कर देते हैं। क्या जरूरत भाई, तुमको तकलीफ हो रही है तुमको मुंह पर बतला दो भाई ऐसा ना करो, लेकिन तकलीफ दे। इधर से गाड़ी आ रही दोस्त की, इधर से गाड़ी जा रही है, दोनों दोस्त रास्ते के बीच में विंडो खोलकर बात कर रहे हैं और पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं जाने के लिए आने के लिए, ये भी तकलीफ है। बहुत सारी चीजें अगर तकलीफ देने वाली गिनने जाए तो हजारों है, बहुत सारी है। इसलिए तकलीफ देने वाला कोई भी काम, देखिए मैं एक आपको मिसाल देता हूं, ये मर्दों के लिए मिसाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, अफजल तरीन नमाज वो है, सबसे अच्छी नमाज जो पहली सफ में पढ़ी, पहली सफ की नमाज सबसे अफजल है, पूरी मस्जिद में अफजल है लेकिन सबसे अफजल पहली सफ में खड़ा होना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इतने फजाइल बयान किए हैं, मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझा रहा हूं कि तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमको पता चल जाए, इफ यू कम टू नो द रिवॉर्ड ऑफ फर्स्ट सब, अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहली सब में नमाज पढ़ने का कितना सवाब है, तो लोग जल्दी आएंगे पहली सब में नमाज पढ़ने के लिए, देर से नहीं आएंगे। और अगर पता चल जाए सवाब को तो अब पूरा अंदाजी करें, यू गोना थ्रो अ लफ्ज जिसका नाम निकले वो खड़ा है, इतने फजाइल। एक हदीस में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते, युसल्लून अलस्सफिल अव्वल, अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी पहली सफ पर रहमत उतार दें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलस्सफिल अव्वल, दिस या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून, इब्ने माजा की हदीस है। क्या कह रहे, अब देखिए कुरान करीम में यही लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, वहां नबी का जिक्र है, यहां सफ़े अव्वल का जिक्र है, सेम है। जो रहमत अल्लाह और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारते हैं वो रहमत अल्लाह पहले सफ़े वाले पर उतारते हैं। मिसाल समझा नहीं, आगे मिसाल देखिए। एक रिवायत में है कान युसल्ली, ये तो बीच में बात आ गई, मैं समझा रहा हूं कि किसी को तकलीफ देना उसको समझा रहा हूं। कान युसल्ली अलस्सफिल अव्वल सलासन व अलस्सानी वाहिदतन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सफ वालों के लिए थ्री टाइम दुआ की है, थ्री टाइम अल्लाह इन पर रहम उतार, अल्लाह इन पर रहम उतार, थ्री टाइम्स। और दूसरी सफ वाले के लिए एक मरतबा, बाकी के लिए तो कुछ नहीं, दूसरी सब के लिए सानी के लिए एक, बाकी के लिए कुछ, पहले सब के लिए कितनी है, तीन मर्तबा दुआ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कान युसल्ली अव्वल तलास वानी वाहिद, यह हदीस है, ये निसाई शरीफ की हदीस है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तरक सफल अव्वल, सुनिए अब मुझे बतलाना है, من ترك الصف الاول مخافه ان يؤذي مسلما فصلى في الصف الثاني او الثالث اضعف الله له اجر الصف الاول। जो आदमी पहली सब को छोड़ दे, बस पहली सब को छोड़ दे, क्यों, इसलिए कि लोग पहले सब में पहले से बैठ चुके हैं, ऑलरेडी फर्स्ट सब फुल है, अब मैं जाऊंगा तो उनको क्या होगी, तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है जगह कम हो या एक आदमी की गुंजाइश नहीं है, बहुत कम जगह है, तो उनको सजदे में भी तकलीफ, रुकू में भी तकलीफ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस वक्त जो शख्स
अपने मुसलमान भाई को तकलीफ ना दे। ये वही बात जो रास्ते में हवा निकाल देते हैं या रास्ते में पाक कर देते, तकलीफ ना दे पहली सब में। हालांकि पहली सब का स्वाब देखिए कितना है, फरिश्ते भी रहमत करते, अल्लाह भी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 टाइम दुआ की है, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो, वहां से उठकर दूसरी सब में चला गया या तीसरी सब में चला गया, बचाने अपने से तकलीफ किसी को ना, उससे बचाने के लिए, तो उसको पहली सब वाले से ज्यादा स्वाब मिलेगा, पहली सब वाले से भी ज्यादा। हालांकि उसका स्वाब तो आपको मैंने बतला दिया। मालूम होता है कि अल्लाह के नबी शासन भी फरमाते हैं कि तुमसे किसी को तकलीफ ना हो, पहले से कोई चीज पड़ी उसको हटा देना सुभान अल्लाह, और ऊपर से किसी का डालना ये तो और बड़ा जुल्म है। एक आदमी हटाता नहीं, चलो पहले से पड़ी है, लेकिन एक आदमी जानबूझकर डाल देता है, जानबूझकर हवा निकाल दिया, जानबूझकर उसके रास्ते में गंदगी डाल दी, जानबूझकर उसको सताया, तो कितना बड़ा जुल्म होगा। ये भी दीन है सीखने की। मैं हर वक्त इबादत नमाज ही का बयान करता रहूं, रोजे ही का बयान करता रहूं, ऐसी बातें ना बोलो जो बहुत जरूरी है। इसलिए तो हदीस में आता है तुम जुमा में आओ तो गर्दन फलान करना आओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, ट्राई करो जल्दी आने की। लेकिन क्यों, जो आदमी गर्दन फलान कर आता है तो क्या होगा, कयामत के दिन उसको सुलाया जाएगा और उसके ऊपर से लोग चलेंगे। देखा, किसी को तकलीफ देने से वहां कितनी तकलीफ होगी कयामत में, तो फिर यहां तो कितनी तकलीफ देते हैं लोग। इसलिए मेरी माए और बहने, ईमान का शौक है, बहुत सारे क्या करते हैं दीवार को खराब करते हैं उसकी, उस पर कलर डाल देते हैं, गंदगी डाल देते हैं, तोड़ देते हैं, बहुत सारा काम लोग करते हैं। इसलिए अपने घर को सामने साफ रखो ताकि आपके घर की गार्डन से किसी को तकलीफ ना हो। हाँ, हदीस में आता है नज़िफू अफनियतकुम, घर के सामने जो हिस्सा है हर घर वाले का फर्ज है कि उसको साफ रखे। ये म्युनिसिपैलिटी का कायदा है, अल्लाह के नबी ने बयान किया, लेकिन म्युनिसिपैलिटी तुम्हारे गार्डन में थोड़ी साफ करने आएगी, वो तो रोज साफ करेगी, गार्डन तो गंदा है उसको साफ करो। ये फर्ज है अपने घर के सामने के हिस्सों को साफ रखो, ये भी इस्लाम है, ये भी दीन का हिस्सा है। हाँ, तो ये बात जरूर याद रखें कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो। बताना तो बहुत कुछ था लेकिन ये मौजू बहुत अच्छा है, जानने जैसा है। आजकल जो लोग उसको गुनाह ही नहीं समझते, वो समझते हैं बस मार दिया किसी को सता दिया, बस आसान काम नहीं, ज्यादा है। हदीस में आता है, आखिरी हदीस सुना देता हूं, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ करते थे काबे, और कहा काबा तो बहुत अच्छा है, बहुत तेरी शान है, लोग मरते हैं काबा जाने के लिए, काबा जाना है, और यहां मुसलमान को तकलीफ देता है। तीसरे चौथे चक्कर में राउंड में फरमाया काबा तुझसे भी अफजल कौन है, ईमान वाला। काबा को गिरा दे कितने गुस्सा करते, और यहां किसी मुसलमान को सताया तो कोई जानता ही नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान है ईमान वाला वो क्या है, जैसे हरम शरीफ की जगह अफजल है, जैसे ईद का दिन कुर्बानी का हरम में अफजल है, जैसे काबतुल्लाह अरफा का दीन है अफजल, ऐसे ही मुसलमान की जान माल आबू इज्जत भी अफजल है। अल्लाह के नबी ने आखिरी वसीयत की है, ये ईमान वाले का दर्जा बहुत बड़ा है। एक मोमिन को कत्ल करना गोया सारी दुनिया को कत्ल करना, ये कुरान में अल्लाह ने बयान किया है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो, कोशिश करो, हो जाए तो उसे माफी मांग लो। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। या रहमान रहीम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदीअ अस्समावाति वल अर्ज़। اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہماری پریشانیوں مشکلوں بیماریوں کو دور فرما،
اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, ان کے اولادوں کے لیے, جو بھی بیمار ہو ہسپتال میں ہو, جن کا آپریشن ہوا ہو, ہونے والا ہو, اے اللہ سب کو شفا کامل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جہاں کہیں جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما, حلال روزی نصیب فرما. اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی, ماں باپ کی, رشتہ داروں کی, بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ اس برکت والی مجلس سے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی, فلسطین اور رفا کے مسلمانوں کی مدد فرما, نصرت فرما, جان مال آب و عزت کی, ایمان کی حفاظت فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وآلہ وسلم.